मेरे ख्याल सदर साहब ने बात की है उसमें बड़ा विजन है और वो उसकी बुनियाद तारीख है। आपने देखा कि जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी रूस और अमेरिका के दरमियान, तो एक बड़ी अहम ट्रीटी इन दोनों मुल्कों के दरमियान थी जो एबीएम ट्रीटी थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जिसका मकसद ये था कि दोनों मुल्क एक दूसरे की मिसाइल की जद में रहें और दोनों में से कोई भी मुल्क ये ना समझे कि वो अपने अपने दफा कर सकता है ओपोनेंट के मिसाइल के खिलाफ। इससे एक स्टेबिलिटी पैदा होती है, आप यूं समझे कि बैलेंस ऑफ टेरर पैदा होता है, दोनों तरफ को पता होता है कि भी दूसरी साइड हमें मुकम्मल तौर पे या पार्शली तबाह कर सकती है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाजर में ये स्टेबिलिटी मौजूद थी, ये दोनों तरफ चूंकि वल्नरेबिलिटी थी और दोनों को मालूम था कि उनके मिसाइल की इतनी रेंज है कि वो हमारे खत्ते को कवर कर सकते हैं। जब ये S-400 या जैसे S-500 या बाद में और हथियार यहाँ पर आ जाते हैं और किसी एक मुल्क को भी ये एहसास हो जाए कि अब वो मुकम्मल तौर पर दफाई तौर पर महफूज है, तो उसका इंसेंटिव जो है अटैक का वो बढ़ जाता है, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो बड़े मुल्कों के भी सोचने की बात है कि अगर ये खित्ता अनस्टेबल होता है तो दुनिया का एक हिस्सा अनस्टेबल हो सकता है, उससे मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी,
मगर इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की जो बात होती है, हिंदुस्तान का मौकफ ये और बड़ा क्लियर मौकफ है कि उसको सिर्फ पाकिस्तान का सामना नहीं है बल्कि दूसरे बॉर्डर पर उसको चीन का भी सामना है, तो अगर वो एक्वायर करता है तो उससे पाकिस्तान को खतरा क्यों लाख होता है? इसलिए कि उसका मौकफ ये है कि वो चीन के खिलाफ या चीन से अपने दिफा के लिए हासिल कर रहा है।
जी, आप यही उनका इस्तेदलाल है, और मतलब ये कि दुनिया उसको मानती भी है और उसमें थोड़ा सा दम भी है इस लिहाज से। लेकिन आप ये देखिए कि चीन और रूस के आपस के ताल्लुकात को जरा ध्यान में रखें, और फिर रूस का हिंदुस्तान को ये हथियार देना, इसको ध्यान में रखें, तो मुझे ये लगता है कि रूस ने इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है उसको कवर करने के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए ये शायद किया है। अदरवाइज स्ट्रेटजिकली अगर हिंदुस्तान ये कहे भी कि चीन के लिए ये इस्तेमाल करेगा या उसके दिफा के लिए करेगा, तो रूस चीन और हिंदुस्तान के तनाजर में ये बात दुरुस्त बैठती नहीं है, ये फिटन होती नहीं है। और बहरहाल चाहे वो किसी के लिए भी तैयारी करे, हमें तो ये देखना है कि हिंदुस्तान के पास जो कुछ भी है वो चूंकि इस्तेमाल हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कुछ लिखा तो नहीं हुआ किसी चीज के ऊपर कि ये कहाँ इस्तेमाल होगी, तो लिहाजा हमें तो अपना दिफा और हमें अपनी जवाबी कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। जी
जी, डॉक्टर नौमान सत्तार साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त तो बैन अक्वामी जो ताकतें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है उस रीजन में स्ट्रेटेजिक को बैलेंस या स्टेबिलिटी के लिए?
मैं समझता हूँ कि जो बैरूनी ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि इस आर्म्स रेस से और स्पेशली जो इस हवाले से हो रही है न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर आर्म नेवर्स के दरमियान हो रही है, उससे खत्ते को कितना खतरा लाहक है। कई बार हमने देखा है और हमें समझते हैं और हमने सुनते आए हैं कि दोनों मुल्क जो थे जंग के करीब आ गए, और जंग अब इससे खतरनाक हो गई है क्योंकि हम दोनों जो जिक्र अभी डिस्कशन हुई है न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। लेकिन इस जो हमारी आलमी ताकतें हैं वो कम से कम इस वक्त इंडिया को इस सेंस में मैं समझता हूँ सपोर्ट कर रही हैं कि उनको एहसास नहीं कि जो इंडिया चूंकि उसकी ताकत ज्यादा है, उसके पास आर्सेनल ज्यादा है, उसके नंबर ज्यादा हैं, उससे पाकिस्तान को छोटा मुल्क होते हुए ज्यादा खतरा है। तो इसमें इसके सोल्यूशन दो किस्म के हैं, एक तो ये है कि हमें आपस में बातचीत करनी है, हम दोनों मुल्कों ने, इंडिया पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं, इन्होंने CBMs को प्रोवाइड करने हैं और उस पर अमल करना है। सेकेंडली ये है कि नेशनल लेवल पर UN और जो मैं समझ रही वर्ल्ड पावर और दूसरे मुल्क नहीं, इन्हें दोनों मुल्कों को पुश करना है कि ये एटलीस्ट इस हवाले से एक दूसरे से बातचीत करें और इस चीज का कोई हल निकालें, ताकि जो आम रेस है, कब जैसे कि भी बात जनरल साहब ने कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका ने इसको कैच किया था, उससे कुछ लिमिट्स लगाएं, उसके बगैर दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, दोनों नंबर बढ़ाते रहेंगे, और मैं समझता हूँ खत्ता जो है वो खतरे की उस जद में रहेगा।